नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गुन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।